लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव समझता है कि अब मैं गया गया काम से, खेल खत्म। ऐसे शब्द सब, ये सब शब्द कहां से आए, ये शब्द कहां से उत्पन्न हुए? उस मान्यता से उत्पन्न हुए कि जिस मान्यता में यह धारणा बनी है कि मेरा नाश होता है मृत्यु के समय, खत्म कर दिया, खत्म। खत्म कर दिया का मतलब क्या? खत्म कर दिया, जीवन खत्म होता है, जीव खत्म नहीं होता। इसलिए मरने से क्या डरना? संलेखना अगर करना हो तो इस तत्व को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो संलेखना के समय मृत्यु निकट आती जाए और फिर आपकी कंपकपी बढ़ती जाए, घबराहट बढ़ती चली जाए, तो ऐसे में कैसे कल्याण होगा? वो तो फिर दुर्ध्यान हो गया, आर्थ ध्यान हो गया। भयभीत होना और भय से पीड़ित होना कौन सा ध्यान है? आर्थ ध्यान है। तो उसमें फिर अपना कल्याण नहीं हो सकता। मृत्यु एक घटना मात्र है, जीवन का अंत नहीं है। किसी शायर ने कहा है, कभी न होगा जिंदगी का यह सफर खत्म, मौत सिर्फ रास्ता बदल देगी। आगे समझ में? यात्रा चालू है, बीच में ट्रेन बदलनी पड़ रही है, होता है ना ऐसा, जंक्शन ट्रेन बदलनी पड़ती है, दूसरी ट्रेन में बैठ गए, यात्रा चालू है। और अगर कोई जीव सम्यक दृष्टि बन करके अपनी यात्रा प्रारंभ करता है तो उसके जितने भव हैं वो उतनी ट्रेन्स बदल करके आखिरी ट्रेन में मोक्ष पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है दृष्टांत? और फिर जो मिथ्या दृष्टि है वो ट्रेन बदलता ही रहेगा, और 84 लाख योनियों की ट्रेन्स है उसके पास, वहां के टिकट्स हैं, तो फिर 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, चारों गतियों में उसका भ्रमण जारी रहेगा। और फिर रास्ते में जो नाश्ता पानी है वो क्या मिलेगा उसको? वही इंद्रिय जनित सुख और दुख, चारों गतियों में और क्या मिलने वाला है? इंद्रिय जनित मानसिक सुख दुख प्राप्त होंगे, आत्मा का सुख तो नहीं मिलने वाला। आत्मा का सुख तो उस ट्रेन में बैठने पर प्राप्त होगा जहां पर रत्नत्रय का टिकट है। वैसे तो सम्यक दर्शन टिकट है इसका, बोलते हैं ना बच्चे लोग वो गीत में। तो इस तरह आश्रव तत्व जो रागादिक है वो आश्रव भाव है, उस आश्रव में ही ये विपरीत श्रद्धान के कारण चैन मानता है, उसको ही सुख समझता है, वास्तव में वो दुख रूप है। इस तरह इसके आगे का जो वर्णन है वो अपन फिर आगे पढ़ेंगे। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद बिसार, आत्म हित हे तु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। अब शुभ और अशुभ फल का जो, शुभ और अशुभ जो कर्म बंध है, शुभ बंध जो है वो पुण्य है और अशुभ बंध जो है वो पाप है। इनके फल के मझार, मझार यानी में, इनके फल में निज पद विसार, अपना जो चैतन्य पद है उसको विसार यानी विस्मृत करके, भूल कर, ये अगृहित मिथ्या दृष्टि जीव क्या मानता है? रति और अरति, पुण्य के फल में इसको प्रेम होता है और पाप के फल में द्वेष होता है। यानी इन दोनों बंधन के फल में एक में प्रेम करता है और दूसरे में द्वेष करता है। जबकि तत्व दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य और पाप दोनों ही बंध रूप है, बंधन स्वरूप है। और बंधन चाहे सोने का पिंजरा हो या लोहे का पिंजरा हो, कभी भी तोते को बंधन पसंद नहीं होता। आचार्य महाराज ने, हमारे गुरु श्री ने एक बार कहा था कि कबूतर उस लकड़ी के खोखे में जहां मालिक उसको पालता है वहां आकर के रात्रि विश्राम करता है। उसके अंदर कितनी भी गंदगी हो वो कबूतर आसमान तक उड़ान भर के वापस उसी कचरे में आकर के निवास करता है। और तोते को अगर एक बार पिंजरे का दरवाजा खुला मिल जाए तो फिर वो अपना रास्ता पकड़ता है और कभी वापस लौट कर उस पिंजरे में नहीं आता है। तो आचार्य जी कहते हैं, हे कबूतर कबूतर, तो इसका तात्पर्य यह है कि अपन सब संसारी जीव जो है वो कबूतर स्थानीय है। तो वो कहते हैं कि कबूतर इतनी ऊंची ऊंची उड़ान भरता है लेकिन वापस उसमें क्यों आता है, कचरे के डब्बे में। तोता जो होता है, तोता किसी का नहीं होता। तो कितने भी सालों तक पाल के रखो, जब उसको उड़ने का मौका मिलेगा वो उड़ करके मालिक को छोड़ देगा। वैसे तो बहुत मीठी मीठी बोली बोलता है वो कबूतर, उतनी अच्छी आवाज नहीं निकालता जितनी आवाज है तोते निकालते हैं। तो शुभ और अशुभ बंधन है वास्तव में देखा जाए तो। जीव और अजीव का संयोग ही संसार है। अब वो संयोग जो है वो पुण्य बंध रूप हो अथवा पाप बंध रूप, लेकिन बंधन बंधन है। इतना जरूर है कि पुण्य सोने का पिंजरा है और पाप लोहे का पिंजरा है। तो इसमें क्या करता है ये अज्ञानी जीव, बंधन को दुख रूप न मानते हुए शुभ बंधन को प्रिय समझता है और अशुभ बंधन को अप्रिय मानता है। यानी नरक को खराब समझता है और देव गति को अच्छा समझता है। वास्तव में देखा जाए तो चाहे नरक गति हो चाहे देव गति हो, संसार की 84 लाख योनियों में जो भटकन है, इन दोनों गतियों में उस भटकन से छुटकारा नहीं है। इसीलिए एक श्लोक आता है, वरम नरक वासोपि सम्यक्त्वेन हि संयुतः। नरक में सम्यक दर्शन के साथ रहना तो बेहतर है लेकिन नहीं मिथ्यात्वयुक्तस्य निवासो दिवि राजते। मिथ्यात्वयुक्त जीव का स्वर्गलोक में निवास करना भी अच्छा नहीं है। यानी मिथ्या दृष्टि जीव अगर स्वर्ग भी चला जाए तो क्या फर्क पड़ गया, चला गया स्वर्ग आयु पूर्ण करके फिर भटकेगा संसार में। और नरक में अगर मिथ्या दर्शन छोड़कर सम्यक के साथ जीव चला जाए तो राजा श्रेणिक के समान वहां से निकलकर फिर तीर्थंकर पद को भी प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त होगा। तो इसलिए सम्यक दर्शन महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हो जाता है वो समझ जाता है, उसके अंदर ये तत्व विवेक आ जाता है कि बंधन बंधन है, चाहे लोहे की बेड़ी हो या सोने की बेड़ी हो। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अभी अपनी भूमिका में अपने कर्तव्यों को छोड़ दो। आ रहा है समझ में? देखो, एक तत्व विवेक होता है और एक भूमिका का विवेक होता है। तत्व विवेक क्या कह रहा है कि बंधन बंधन है, लोहे का या सोने का एक बराबर है बंधन की अपेक्षा। लेकिन अब आप अपनी भूमिका देखें तो फिर अपनी भूमिका में आपके लिए क्या छोड़ने योग्य है और क्या स्वीकार करने योग्य है भूमिका में, आस्था में नहीं। आस्था में तो यह है कि दोनों प्रकार के बंधनों से मुझे छूटना है, आस्था तो यह है। लेकिन भूमिका देख करके क्या समझ में आएगा कि नहीं, अभी पुण्य का बंधन तो मैं छोड़ नहीं सकता, पुण्य को तो मुझे करना पड़ेगा, पुण्य के प्रति मैं अभी विमुख नहीं हो सकता, और पाप को मुझे प्रयास करके छोड़ना पड़ेगा। और पाप को छोड़ने के लिए क्या करोगे, एक ही रास्ता है, पुण्य को पकड़ना पड़ेगा। पुण्य को पकड़ने से पाप छूटता है और आत्मा को पकड़ने से पुण्य भी छूट जाता है आगे चलकर। माने ये एक श्रेणी है। तो पहले देखिए, कांटा कैसे निकलता है, सुई से निकलता है। सुई एक प्रकार से लोहे का कांटा है, तो निकला तो उसी से ना। इसी प्रकार पाप कैसे छूटेगा, पुण्य से। लेकिन वो पुण्य भी शुद्ध आत्मा की अपेक्षा से चिंतन करने पर आत्मा का स्वरूप नहीं है। पाप भी बंधन रूप है और पुण्य भी बंधन रूप है। तो इसलिए यहां पर जो बता रहे हैं कि पुण्य के बंध में उसको प्रीति होती है, पाप के बंध में अप्रीति होती है, द्वेष होता है और निज पद विसार। कारण क्या रहता है कि अपने आत्मा के स्वरूप का उसने विस्मरण कर दिया है, उसको भूल गया है। और आत्मा का हित किस में है? तो पुण्य और पाप में आत्मा का हित नहीं है। पुण्य के उदय में उसको आत्महित करने के लिए अनुकूल वातावरण मिल सकता है, लेकिन पुण्य का उदय उसकी आत्मा का हित करा नहीं सकता। पुण्य के उदय से आपको गुरु मिल सकते हैं, लेकिन गुरु मिलने मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। समझ में आ रही बात? देखो, पुण्य का इतना उपकार तो अपन नकार नहीं सकते। यहां तक तो पुण्य धन्यवाद का पात्र है कि देवशास्त्र गुरु को मिला दिया, लेकिन इसके बाद किसको क्या करना है वो समझने की बात। अब आप ये सोचो कि भाई वही पुण्य जिसने मुझे देवशास्त्र गुरु तक पहुंचाया था, वही पुण्य मुझे निर्वाण तक ले जाए, तो यहां पर ये बड़ी भूल हो जाएगी, क्योंकि निर्वाण तक ले जाने वाले कौन है? आत्मा के हित के हेतु कौन है? हित के हेतु समझ में आ रहा है? हेतु किसको बोलते हैं? कारण को। और हित किसको बोलते हैं? भलाई को। तो आत्मा की भलाई में कारणभूत कौन है? तो अगली पंक्ति देख लीजिए, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, वैराग्य और ज्ञान ये आत्मा के लिए हितकारी है। अब ये वैराग्य और ज्ञान जो आत्मा के लिए हितकारी है, उसको मिथ्या दृष्टि जीव क्या मानता है? तय आपको कष्टदान लगे। अब जो आत्मा के लिए हितकारी वैराग्य और ज्ञान है, वो उसको मिथ्या दृष्टि जीव को कष्ट देने वाले लगे। यानी जहां वैराग्य की बात आती है तो फिर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती हुई नजर आती है कि अब ये टॉपिक निकल आया, अब तो मुसीबत आ गई, आफत आ गई। तो वैराग्य की बात होती है तो उसको तकलीफ होने लग जाती है, और ज्ञान की बात हो तो भी वो परेशान हो जाता है। तो वो अपने लिए कष्टकारी लगते हैं, और बात मात्र नहीं, साक्षात जो वैराग्य नाम का भाव है वो उसको कष्टकारी लगता है। क्योंकि वो क्या देखता है कि जिसको वैराग्य होता है वो सब सांसारिक सुखों को छोड़कर त्याग मार्ग की ओर बढ़ जाता है, तपस्या करने लग जाता है। ये तो बहुत कष्टकारी वस्तु है, इसलिए अपने को तो वैराग्य नहीं है, अपन ठीक ठाक है। जिनको वैराग्य हो जाता है वो लोग तो सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं और तपस्या करने लग जाते हैं। कितना कठिन जीवन जीते हैं, एक बार आहार, अंतराय, पैदल चलना, केश लोच, कितने सारे मुसीबतें अपने आप उनके जीवन में वो झेल लेते हैं। तो उनके लिए वो सब चीजें कष्टकारी लगती है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि तपस्या का परिणाम क्या है और वैराग्य कितना आनंदकारी है। उसको तो सिर्फ बाहर का दिख रहा है कि ये छूटा, ये जो खाते पीते थे और फिर ये जो सब विषय थे अपने पास, जो इंद्रिय सुख थे, वो सब अलग हो गए। अब देखो कैसा, क्या जीवन है, एकदम खाली खाली सा जीवन है, कुछ नहीं इनके पास। ऐसा लगता है रागी जीव को वैरागी जीव ऐसा दिखता है। रागी के पास बहुत कुछ है बाहर, पर उसको ये नहीं मालूम कि वैरागी के अंदर क्या है। उसको ये दिख रहा है कि वैरागी के पास बाहर कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको लगता है कि ये क्या जीवन है, बहुत कष्टकारी जीवन है, कुछ नहीं। एक बार भोजन कर लिया, वो भी गृहस्थों के घर, और फिर वापस आकर के कुछ भी, पानी का भी बंदोबस्त नहीं। कमंडल है तो कमंडल का पानी सिर्फ शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सेवन नहीं कर सकते। कितना मुसीबतों से भरा हुआ जीवन है। तो उसको वैराग्य और ज्ञान ये दोनों बड़े कष्टकारी दिखाई देते हैं। रोकी न चाह निज शक्ति खोए। अब कई पुस्तकों में रोके न चाह छपा है, इसमें रोकी न चाह। नहीं, यहां पर ये कह रहे हैं कि अपनी चाह को तो नहीं रोका उसने, और शक्ति को खोकर निराकुल रूप जो मोक्ष है उसको नहीं समझ सका। अपनी चाह को न रोककर, रोकी न चाह निज शक्ति खोए। ये पंडित जगनमोहन लाल जी रोकी पाठ को उचित मानते थे। अब कई पुस्तकों में रोके पाठ भी दिया हुआ, और अगर रोके पाठ का अर्थ निकालो तो फिर ऐसा अर्थ निकलेगा कि चाह को तो रोकता नहीं है, अपनी शक्ति को खो देता है। चाह को न रोकने से अपनी शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि इच्छाओं की आप पूर्ति करने जाएंगे तो वह एनर्जी जो है, जो ऊर्जा है, अपनी शक्ति है, वो उसमें खर्च हो जाएगी। और फिर निराकुल जो मोक्ष का स्वरूप है उसके दर्शन नहीं मिलने वाले। ध्यान के समय योगी को जो आनंद प्राप्त होता है, बस वही आनंद मोक्ष की प्रेरणा बन जाता है। रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुल तान जोय, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। याही प्रतीति जुत, अब देखिए इसी प्रतीति का अर्थ होता है विश्वास, श्रद्धा, आस्था। तो अपनी चाह को न रोककर, शक्ति को गंवाकर, मोक्ष के स्वरूप निराकुलता को नहीं देखता, वो सोचता है कि इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख है। निराकुल जो मोक्ष है उसके स्वरूप को नहीं समझता। और यही प्रतीति, ऐसी श्रद्धा के साथ जो कुछ भी ज्ञान उसके पास है, चाहे वो बड़ी बड़ी पुस्तकों का ज्ञान हो अथवा व्यावहारिक ज्ञान हो, वो सारा ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। ये जान लो कि उसके पास जितना भी ज्ञान होगा वो सब दुखदायक अज्ञान रूप ही होगा। अज्ञान का अर्थ हो गया मिथ्या ज्ञान। न जानना भी एक प्रकार का अज्ञान होता है। और दूसरा अज्ञान क्या है? जान तो रहा है लेकिन ताको जानो मिथ्या चरित, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जीह, अब जे गृहीत सुनिए सुतेह। इन जुत यानी इनसे युक्त, किनसे? मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, इनसे युक्त जो प्रवृत्त, जो प्रवृत्ति यानी जो आचरण होता है, आचरण को क्या कहते हैं? चारित्र। तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से सहित, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान से युक्त जो प्रवृत्ति होती है, जो आचरण होता है, किसमें आचरण होता है? विषयनी में, पांच इंद्रियों में ही, पांच इंद्रियों के सुख में ही उसकी प्रवृत्ति होती है। ताको जानो मिथ्या चरित्र, उसको मिथ्या चरित्र जानो। यानी मिथ्या चरित्र क्या वस्तु हुई? मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो प्रवृत्ति हो रही है विषय कषायों में, उसी का नाम मिथ्या चरित्र है। यों इस प्रकार जेह मिथ्यात्वादी निसर्ग, जो मिथ्यात्वादी निसर्ग यानी बिना किसी के उपदेश के चले आ रहे हैं, उनका स्वरूप पूर्ण होता है। अब इसके आगे जे गृहित, जो गृहित है ना, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरित्र, ये दो प्रकार के हैं, अगृहित और दूसरे गृहित। अगृहित किसको कहते हैं? कि जो कहीं से ग्रहण नहीं किया, अपने आप उसके अंदर मिथ्यात्व के उदय से वो चीज चली आ रही है। और गृहित किसको कहते हैं? कि किसी के उपदेश से या किसी की संगति से, किसी के संसर्ग से वो चीज ग्रहण करने में आ गई, वो गृहित कहलाते हैं। तो अब जे गृहित, अब जो गृहित मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरित्र है, सुनिए सुते है, उनको अब अच्छी तरह से सुन लो। जो कु गुरु कु देव कु धर्म सेव, कोशे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते सनेह धारे कुलिंग लहि महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म इनकी सेव यानी सेवा है, इनकी जो उपासना है आराधना है, वह चिर चिर यानी लंबे समय तक दर्शन मोह एव पोषण मिथ्यात्व को ही पुष्ट करने वाली है। कौन? कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा। कुगुरु कुदेव और कुधर्मों की सेवा मिथ्यात्व को ही पुष्ट करने वाली है। दर्शन मोह का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व। यहां पर अब इसके आगे आगे बतलाते हैं कि कुगुरु कौन है, कुदेव कौन है और कुधर्म क्या है। तो कुगुरु कौन है, देखिए, अंतर रागादिक धरे जे है, जो अंतर अंतर यानी अपने हृदय में अपने भीतर रागादि धरे, राग द्वेष काम क्रोध मद मात्सर्य आदि विकारी भावों को अपने हृदय में जो धारण करने वाले हैं, और कैसे हैं, बाहर बाहर क्या है उनके, धन अंबर ते स्नेह, धन से उनको प्रेम है, अथवा अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, तो धन से वस्त्र आदि से जिनको प्रेम है, देखिए लोक में उनको गुरु मान रहे हैं कि ये गुरु महाराज है और उनका गुरु के समान आदर सत्कार भी हो रहा है, लेकिन स्वरूप क्या है कि अंदर में अभी तक राग द्वेष विद्यमान है और बाहर वस्त्र आदि के प्रति उनका जो प्रेम है वो छूटा नहीं है, धन से भी उनको लगाव है। और धारें कुलिंग, अनेक प्रकार के कुलिंग, लिंग का अर्थ होता है वेश, लिंग शब्द के 20 अर्थ बताए हैं प्रवचन सार ग्रंथ में, लेकिन यहां पर लिंग शब्द का अर्थ क्या है, वेश। तो कुलिंग धारे, कुलिंग धारे यानी जो निर्विकार वेश है उसको न धारण करके कुलिंग को धारण करते हैं, विपरीत वेश को, खोटे वेशों को धारण करते हैं, और महत भाव लही और अपने अंदर महानता का भाव धारण करते हैं कि मैंने ये वेश धारण किया है, मैं साधु हूं, मैं गुरु हूं, मैं बड़ा महान हूं, ऐसा भाव अपने अंदर धारण करते हैं। महत भाव लही, लही यानी महान, अपने महत्व भाव को प्राप्त करके अपने भीतर वो मैं बड़ा हूं इस भाव को प्राप्त हो जाते हैं, और बस ते कुगुरु, वे कुगुरु हैं जिनके जिनका ऐसा स्वरूप है, वे कुगुरु हैं। और कुगुरु का परिणाम क्या होता है इनके सेवन का, तो बोले जन्म जल, जन्म का अर्थ है संसार और जल का अर्थ जल है या पानी, संसार रूपी जल के लिए, संसार रूपी जल को पार करने के लिए ऐसे गुरु की अगर कोई शरण ले ले तो फिर गुरु को तो नाव कहा है ना, नैया है, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। तो ये कुगुरु जो है जन्म जल संसार रूपी जल को पार करने के लिए उपल नाव, उपल उपटा बोलते ना, उपटो लग गो, पैर में लग जाता कभी कभी, उपल का अर्थ है पत्थर, तो पत्थर की नाव है वो, और पत्थर की नाव कभी तैरती है तो वो न तैरती है और न तारती है, पत्थर की नाव न स्वयं तैरती है पानी में और न अंदर बैठने वाले को तारती है, इसलिए जो कुगुरु को अपना गुरु बनाता है वो संसार में नियम से डूबता है। और कुगुरु का स्वरूप ख्याल में रखने की चीज है, क्या स्वरूप है उनका, अंदर में राग द्वेष भरे हुए हैं और बाहर धन वस्त्र आदि परिग्रह के प्रति स्नेह धारण किए हुए हैं, और कैसे हैं, अनेक प्रकार के वेश धारण किए हुए हैं, खोटे वेश और महत भाव लही बड़प्पन को प्राप्त हो गए हैं, अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, गुरु मान रहे हैं। अगर कोई आदर न करे तो फिर शाप देने तक को तैयार हो जाए, कुछ भी मतलब शब्दों का भी संयम भंग हो जाता है, कुछ भी बोल जाते हैं, तेरे को भस्म कर दूंगा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसे शब्द भी बोल देते हैं। ते कुगुरु, वे कुगुरु हैं, और जन्म जल संसार रूपी जल में उपल नाव पत्थर की नाव के समान है। माने कोई भी कुगुरु का सेवन करने वाला संसार रूपी जल से, संसार सागर से पार नहीं हो सकता, क्योंकि वो पत्थर की नाव में सवार है। पत्थर की नाव स्वयं भी नहीं तैरती और अपने अंदर जो भी बैठ जाए उसको तार नहीं सकती। जी राग द्वेष मल करि मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जुसेव, षठ करतन तिन भव भ्रमण छेव। अब देखिए कुगुरु का स्वरूप तो समझ में आया सबको, तो जो ऐसे गुरु हैं जिनके भीतर राग द्वेष भरे हुए हैं और बाहर धन और वस्त्र आदि के प्रति जिनको स्नेह है, खोटे वेशों को जिन्होंने धारण करके रखा है और बड़प्पन के भाव को प्राप्त हुए हैं, वे कुगुरु हैं। संसार रूपी जल से तारने के लिए वो पत्थर की नाव के समान है, नाव भी डूबेगी बैठने वाले को भी डुबाएगी। अब कुदेव कौन है, कुदेव किसको कहोगे, तो उसका स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं, यहां सम्यक दर्शन से विपरीत जो मिथ्या दर्शन है उसकी चर्चा चल रही है। कौन से मिथ्या दर्शन की चर्चा है, अभी पहले क्या था, पहले अगृहित था और अब गृहित मिथ्या दर्शन है। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो राग द्वेष मल करी मलिन, जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है, यानी देव तो माने जा रहे हैं जगत में, मिथ्यात्व के उदय से गृहित मिथ्या दर्शन के कारण संसारी जीव उनको देव, यानी यहां देव शब्द का अर्थ है भगवान परमात्मा, यहां देव शब्द का अर्थ वैमानिक देव या भवनवासी व्यंतर देव नहीं है, ये इसमें कोई शंका, देव शब्द का अर्थ यहां पर क्या है, स्पष्ट है ना, इसमें कोई भ्रम तो नहीं है किसी को कि यहां पर देव शब्द का अर्थ वो हो सकता है वैमानिक देव, कल्पवासी, ग्रहवैकवासी और फिर उसके ऊपर वाले व्यंतर या और कोई, ऐसा तो नहीं है। यहां पर देव शब्द का अर्थ क्या लेना, कुदेव शब्द का अर्थ क्या है, जो ऐसे रूप को धारण करने वाले और परमात्मा माने जाने वाले देव हैं वे। तो राग द्वेष रूपी मल से जो मलिन है, यानी मलिन का अर्थ विकृत है, यानी जिस जिन परमात्माओं के अंदर राग द्वेष रूपी विकार अब भी विद्यमान है, दुनिया उनको परमात्मा के रूप में पूज रही है, लेकिन उनका रूप कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, उनके भीतर राग द्वेष आदि मल विकार मौजूद है। और वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, अब चीन का अर्थ था पहचान, उनकी पहचान क्या है, वनिता यानी परमात्मा होकर के भी जिनके पास वनिता यानी स्त्री है ना, इसमें स्वाभाविक प्रश्न उठना है कि परमात्मा को स्त्री की क्या आवश्यकता है, स्त्री तो गृहस्थों के पास होती है और अन्य मत के कई साधु भी ब्रह्मचारी रहते हैं, फिर वो जिनकी आराधना कर रहे हैं, जिन भगवंतों की, जिनको भगवान मान करके पूज रहे हैं, उनके पास स्त्री हो, पत्नी हो, तो फिर ये कैसा विचित्र स्वरूप हो जाएगा भगवान का। कि जो दोष गृहस्थ में न पाए जाए अथवा साधु में न पाए जाए वो उनके आराध्य में पाए जाए। तो ऐसे स्वरूप वाले जो आराध्य होते हैं उनको यहां पर कुदेव कहा गया है। कुदेव का अर्थ होता है कुत्सित देव, यानी जो सच्चे देव नहीं है, विकृत स्वरूप वाले जो भगवान है उनको कुदेव कहा है। और वनिता, और कौन से चिन्ह है, गदादि, गदा आदि, माने गदा आदि का मतलब यहां पर कोई भी अस्त्र शस्त्र। तो अस्त्र शस्त्र की भगवान को क्या आवश्यकता है? अब एक तरफ कह रहे हो कि सर्वशक्तिमान है और दूसरी तरफ ऐसे हथियारों को भी लेकर के खड़े हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि हथियार रखना किसी न किसी प्रकार से अंतरंग स्थिति को प्रकट करता है। हथियार कौन रखेगा, उसके अंदर की दशा क्या होगी, किसी का खतरा हो या किसी से लड़ने की नौबत संभावित हो या किसी का निग्रह करना हो, किसी को मारना हो, हथियार कब रखे जाते हैं बताओ?